वार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा स्थान कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्रम ध्वजा विराजे मूज जनेऊषा शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर तहु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र जी के काज सवारे जीवन रखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वरतहि समुहाए सहस बदन तुम रो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे कालिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिंसा कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वर सब जग जाना सहस्र जो जन पर मानो लोकाहि मधुर बल जाना का मेल मुख माई जल दिनाथ गए अचरज नाई ब्रह्म काज जगत के जेते शुभम अनुग्रह तुम देते राम गुवारी तुम रखवारे लोक नाजा बिनु कैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते गावे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरे सब किया जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कम वचन ध्यान जोड़ावे सब भज राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परिषित जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट से दिन अवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति जी राजा भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंधकार रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चेत न डरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान कुशाई कृपा करो गुरुदेव किराई सतवार पाठ कर कोई झूठई बंदे महाशुक होई जो जर पड़ हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गोरी सा तुलसी राश सदा हरि चेरा की जे नाथ हृदय महानेरा पवन धर संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर श्यामल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सीताराम आरति श्री राम मायन जी की रति करीत ललित सी अपीची आरति श्री गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद पारिणीत ज्ञान विशारद सुख सन कादि पवन सुत की
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम् मृजत पथरु जो यो हरेन्द्रानुजाप्या वैरुप्याशुर्पणख्या प्रिय विरह ऋष रोपित प्रोविजंभ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रो लक्ष्मीनाथ समारंभा नातिया मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम परा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु श्री रघुनंदन राम की अनंत कृपा के फलस्वरूप गुरुदेव के 24वें वैकुंठ उत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग वेदावतार श्रीमद वाल्मीकि रामायण परम पूजनीय प्रातस्मरणीय जगतगुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के मुख से श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। कथा के 2 दिन शेष हैं और कल सद्गुरुदेव भगवान की 24वां वैकुंठ उत्सव की पूर्णता है। कल प्रातःकाल श्री रंगनाथ मंदिर के सेवकों द्वारा कुछ अर्चकों द्वारा भगवान हमारे आराध्य श्री वेंकटेश भगवान एवं श्रीनाथ जी का मंगला शासन और श्री गुरुदेव का स्मरण यहाँ हमारे परिवार के द्वारा प्रातःकाल बेला में किया जाएगा। पूज्य महाराज जी भी सम्मिलित रहेंगे। तत्पश्चात कल विश्राम दिवस की कथा यहाँ सुसंपन्न होगी। पुनः फिर 1 वर्ष का इंतजार और फिर गुरुदेव का 25वां उत्सव यहां मनाया जाएगा। एक और सूचना आप सबको देनी है कि पूज्य महाराज जी के दर्शन फिर हमको होने वाले हैं जनवरी में 11 से 17 जनवरी हमारे श्रीनाथ जी जिनका वार्षिक उत्सव गत वर्ष नाथद्वार में हमने किया था, इस बार उनका वार्षिक उत्सव श्री पंढरपुर धाम में होना था लेकिन इस कोरोना के कारण वो वार्षिक उत्सव भी नहीं हो पाया। पंढरपुर में नहीं हो पाया लेकिन अब ब्रजधाम में वो होगा 11 से 17 जनवरी और जिसमें प्रातःकाल 9 बजे से कथा की सेवा रहेगी और शाम को यहाँ गिरधर लाल जी विराजेंगे। उनका बढ़िया मंडप यहाँ पर अविराजित होगा, उनके दर्शन प्राप्त होंगे। नित्य यहाँ पर सुंदर सुंदर गायक और अर्चक सब आएंगे और पूज्य महाराज जी की भी हमको डेट मिल गई है, 16 तारीख को पूज्य महाराज जी यहाँ विराजमान होंगे और 17 को भी कथा में तो रहेंगे महाराज जी प्रारंभ में, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे। आप सब वैष्णवजन जो वृंदावन निवासी हैं या आसपास से जो आए हैं सब लोग 11 से 17 जनवरी श्री गिरधर लाल जी के उस मंगल में द्वितीय जन्मोत्सव में सब लोग सम्मिलित हों। वहां पर ठाकुर जी का मंगल में उत्सव और कथा का क्रम रहेगा। बस यही जानकारी आप सबको देनी थी। बाकी अतिकाल हुआ है, पूज्य महाराज जी से हम निवेदन करेंगे कि वे अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें और मंगलमयी वाल्मीकि रामायण के मंगलमय प्रसंगों को सुना करके कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में विनती निवेदन, वे अपनी वाणी से हम सब लोगों को कृतकृत करें। पूज्य महाराज जी
श्री सीता रामचंद्र भगवान की
जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की
जय।
श्री हनुमान जी महाराज की
जय।
श्री अवध धाम की
जय।
सरयू मैया की
जय।
श्री वृंदावन धाम की
जय।
श्री यमुना मैया की
जय।
श्री वाल्मीकि भगवान की
जय।
श्री वेदव्यास भगवान की
जय।
श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की
जय।
सब संतन की
जय।
सब भक्तन की
जय।
जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा व्रणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्विद्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्यावयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणम् श्रीराधाकान्तस्मरणम् सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की
जय
श्री हनुमान जी महाराज की
जय
श्री वाल्मीकि भगवान की
जय
श्री वाके बिहारी लाल की
जय
श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की
जय
श्री सद्गुरुदेव भगवान की
जय
संत समाज की
जय
भक्त समाज की
जय
जय जय सीताराम।
भगवान श्री सीताराम चंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय
प्यारे राम
दशरथ राज दुख
अध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की जब महती कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जिनके भावमयी उपस्थिति में उनके मुखोल्लास के लिए हम सभी लोग ये महोत्सव अनुभव कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के महान उद्गाता पूज्य श्री ठाकुर जी, उनके चिरंजीवी आचार्य श्री इंद्रेश जी एवं समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर पूज्य गुरुदेव भगवान की स्मृति में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान के गुणगणों का यथामति अनुशीलन हम सभी लोग कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र अपार अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् प्रोक्तम् महापातकनाशनम्। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला है और भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम का स्मरण, उनका चिंतन, उनकी प्रेरणा हमारे जीवन को सत्पथ में लगाती रहती है। भगवान के सभी रूप दिव्य हैं, मंगलमय हैं। सभी भगवान के अवतार दिव्य कल्याणप्रद हैं, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र जितना व्यापक और जनग्राह्य हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। किसी के घर में ब्याह हो तो राम जी के ही ब्याह के गीत गाए जाते हैं। और तो और, हम कहीं किसी परिस्थिति में दुखी भी होते हैं, वेदना से युक्त होते हैं, तो सहज भाव से हमारे मुख से राम जी का ही नाम निकलता है। लोग कहते हैं अरे राम रे राम, ऐसा हो गया, राम जी का ही नाम निकलता है। इतना ही नहीं, जब जीवन की लीला समाप्त होती है तो अंत में भी लोग यही कहते हैं राम नाम सत्य है। सभी नाम सत्य हैं, विष्णु नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, लेकिन प्रधानता इसी की दी जाती है, राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम हमारे जीवन में आदर्श के रूप में उपस्थित है और राष्ट्र की आत्मा है भगवान श्री राम। बिना भगवान श्री राम के राष्ट्र की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने जब केकई जी को डांटा वन के प्रसंग में, केकई जी ने जब कहा कि रघुनंदन श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके वन में जाएंगे, ये राजसी वस्त्र पहन करके नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम ने बलकल वस्त्र धारण किया तो श्री जानकी जी भी बलकल वस्त्र को लेकर के धारण करने लगी। श्री जानकी जी को बलकल वस्त्र पहनना नहीं आता, कभी छुआ भी नहीं था बलकल वस्त्र को उन्होंने, पहनना तो बहुत दूर की बात। भयभीत हो रही थी श्री जी की कहीं मां के कई नाराज न हो जाएं, और जल्दी जल्दी उन बलकल वस्त्रों को उन वस्त्रों के ऊपर ही लपेटना शुरू कर दिया। जानकी जी की इस त्वरा को देखकर, उनके भयभीत मुखमंडल को देखकर महर्षि वशिष्ठ से रहा नहीं गया। गुरुदेव वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने केकई को डांटा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांशिनी। अति प्रवृत्ते, तू अपने सीमा का अतिक्रमण कर रही है। दुर्बुद्धिशालिनी कुलपांशिनी, तूने कुल को कलंकित कर दिया। न प्रमाणे वतिष्ठति, तू अपनी सीमा में नहीं है। तू क्या समझती है रघुनंदन अयोध्या से चले जाएंगे तो ये अयोध्या अयोध्या रहेगी? कदापि नहीं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वशिष्ठ जी ने यही कहा कि कई न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स। राम जहां निवास करेंगे वो जंगल ही राष्ट्र बन जाएगा और तुम्हारी ये अयोध्या जंगल हो जाएगी। ये राष्ट्र की परिभाषा महर्षि वाल्मीकि महर्षि वेद वशिष्ठ ने बताई। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? बोले जिस राष्ट्र का आदर्श, जिस राष्ट्र के राजा राम हो, और जिस राष्ट्र में राम का सम्मान हो, वही राष्ट्र राष्ट्र है, अन्यथा वो राष्ट्र नहीं हो सकता। ये राष्ट्र की परिभाषा। वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त ग्रंथ मुक्त कंठ से भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। परम तत्व भगवान श्री हरि जो हैं, इन्हीं का गान रामायण में, पुराण में, वेद में, उपनिषद में, समस्त धर्म ग्रंथों में प्रकारांतर से कहा गया। भगवान श्री रघुनंदन के पावन चरित्र का हम सभी लोग अपनी मति और गति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ, दिव्य दंपति अयोध्या पधारे, अयोध्या में परम आनंद हुआ और बहुत दिनों तक उत्सव चलता रहा, और फिर श्री सीताराम चंद्र जी 12 वर्ष तक श्री अवध में सुखपूर्वक निवास करते। भगवान श्री राम के दिव्य गुणों को देख करके श्री दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित होते, प्रसन्न होते। अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही महर्षि वाल्मीकि ने पुनः भगवान श्री राम के अलौकिक दिव्य गुणों का वर्णन किया। भगवान के अनेक दिव्य गुणों में यह भी एक गुण है कि भगवान किसी के दोष को याद नहीं रखते। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। कोई कितना भी अपकार कर दे, भगवान उसके अपकार को भूल जाते हैं और उसके उपकार को याद रखते हैं। एक बार उसने अगर उपकार किया है तो उस उपकार को भगवान याद रखते हैं। 999 बार उसने अगर अपकार किया है तो उस अपकार को भगवान भूल जाते हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचा नृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः। चना भगवान श्री राम नचानृत कथो विद्वान। राम जी कभी झूठी कथा नहीं कहते, अनृत कथो असत्य भाषण नहीं कहते, और असत्य भाषण ही नहीं, कोई असत्य कथानक का उदाहरण भी नहीं देते, किसी काल्पनिक कथानक का व्याख्यान भी नहीं करते, ऐसी सत्य की निष्ठा। आज हम भले सत्यवादी हों, कभी झूठ न बोलें, लेकिन झूठी कहानी अगर पढ़ते हैं, काल्पनिक कहानी पढ़ते हैं, तो उस असत्य को तो कम से कम मस्तिष्क में रखते ही रखते हैं। लेकिन भगवान श्री राम नचानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः, और वृद्धों का सदा समादर करते हैं, वृद्धों का आदर करते। कुलोचितमति क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते। स्वकुलोचित मति ही क्षात्रम, स्वकुलोचित मति ही अपने रघुवंश कुल का जो सिद्धांत है, क्षत्रिय के कुल का जो धर्म है, उस धर्म को धारण करते हैं। स्वधर्मम बहुमन्यते, ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वधर्मम बहुमन्यते, अपने स्वधर्म को ही भगवान बड़ा मानते हैं, और यही मानना चाहिए हमको आपको भी। स्वधर्मम बहुमन्यते, दूसरे के धर्म को देखकर हमें यह लगे कि हमारा धर्म इनसे कम है, इनका धर्म हमारे धर्म से श्रेष्ठ है, और हम अपने धर्म को छोड़ करके उनके धर्म का अनुकरण करने लग जाएं तो वो अधर्म हो जाता है। यहीं पर हम चूक जाते हैं, धर्म में देखा देखी करने लगते हैं, सामने वाला ऐसा करता तो हम भी यही करें, ये शायद बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन अपने धर्म को, स्वधर्म को ही श्रेष्ठ समझना, यही स्वधर्म वो सनातन धर्म है। स्वधर्मम बहुमन्यसे, भगवान श्री रघुनंदन अपने स्वधर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और अपना स्वधर्म थोड़ा भी हो तो वो हमारा कल्याण करेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अपने स्वधर्म का हमने अगर स्वल्प मात्रा में भी पालन किया तो हमारा स्वधर्म समय आने पर हमारी रक्षा करेगा, लेकिन दूसरे के धर्म का हमने बहुत ज्यादा पालन किया लेकिन समय आने पर वो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा धर्म ही नहीं था। स्वधर्मम बहुमन्यते, अपने स्वधर्म को हम बहुत मानते हैं, राम जी अपने स्वधर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और यही मानना चाहिए। पुरुष का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, वानप्रस्थी का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है। अपने अपने आश्रम और वर्ण के अनुकूल हम जो धर्म का पालन करते हैं यही सनातन धर्म है और यही स्वधर्म है, और इस स्वधर्म को जो श्रेष्ठ समझता है वही भगवान की दृष्टि में भक्त होता है, ये भी जान लेना। अपने स्वधर्म का हम त्याग करके भगवान की भक्ति करें तो वो भक्ति भगवान को प्रिय नहीं होती। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्तान उल्लंघ्य वर्तमनि, भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, और मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करके जो व्यक्ति कुछ भी धर्म कर्म करता है वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है, वो मुझको प्रिय नहीं। तो स्वधर्म का त्याग यह बहुत बड़ा अपराध है। गीता भी स्वधर्म की ही प्रेरणा देती है, भगवान श्री राम भी अपने चरित्र से स्वधर्म का ही उपदेश देते हैं। स्वधर्मम बहुमन्यते, और लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः, लोक व्यवहार में भी भगवान श्री रघुनंदन बड़े प्रवीण हैं। किसी के घर कोई उत्सव हो तो समय से उपस्थित हो जाते, किसी के घर में कोई दुख हो, विपत्ति हो, तो उसके परिजन पुरजन तो बाद में आएंगे, राम जी पहले पहुंच जाते संवेदना व्यक्त करने। लोक व्यवहार में ऐसी भगवान श्री रघुनंदन की कुशलता, इन सारे गुणों को देख करके श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते, बड़े हर्षित होते। और जब कभी रघुनंदन श्री राम निश्चिंत रहते, व्यस्तता न होती, तो भगवान गायन करते, वीणा बजाते, ठाकुर कन्हैया वंशी बजाते हैं तो हमारे रघुनंदन वीणा बजाते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित्, वैहारिकाणां शिल्पानां, बिहार के जो शिल्प हैं अर्थात आनंद विहार करने में जो जो गान वाद्य प्रक्रिया होती है उन सब प्रक्रिया के पंडित हैं श्री रघुनंदन, टीकाकारों ने यही अर्थ किया है यहां पर। वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित्, वीणा वादन करते, गायन करते और अपने मित्रों के साथ आनंद की अनुभूति करते। भगवान श्री रघुनंदन भी बड़े रसिक हैं, ऐसा नहीं है कि श्री रघुनंदन केवल मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए रस की भी जो मर्यादा है उस मर्यादा को समझते, रसिकों की जो मर्यादा है उस मर्यादा को भी धारण करते हैं। और हमारे श्री अवध में रसिक परंपरा के आचार्य तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी रघुनाथ जी रासलीला भी करते हैं। श्री रघुनाथ जी की जब अष्टयाम सेवा होती है तो अष्टयाम सेवा में समस्त सेवा को संपन्न करने के बाद भगवान जब शयन करते हैं तो कहते हैं शयन के समय यही चिंतन करते हैं भक्त लोग कि अब अर्धरात्रि में भगवान रासक क्रीड़ा करेंगे। अर्धरात्रौ ततो रामो रास क्रीडां करोति सह। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अष्टयाम सेवा में वर्णन करते हैं कि रासहास विलासेषु कुशली रघुनंदनः। रासहास विलासेषु कुशली रघुनंदनः, रासहास विलास इन सब में श्री रघुनंदन कुशल है। और हमारे रसिक जन तो कहते हैं कि चित्रकूट में ठाकुर जी ने जो रासलीला की, चित्रकूट की लीला ठाकुर जी की बड़ी रसमयी लीला है। चित्रकूट के ठाकुर जो हैं उनकी वंदना करते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि जो रमा के आनंद मंदिर हैं, चित्रकूटालयम वंदे इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूटालयम, चित्रकूट जिनका आलय है, ऐसे रघुनंदन कौन है? बोले इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा के लक्ष्मी के आनंद मंदिर है। श्री जी को, भगवती जानकी को जो आनंद चित्रकूट में प्राप्त हुआ, वो आनंद अयोध्या में प्राप्त नहीं हुआ, वो मिथिला में प्राप्त नहीं हुआ, वो कहीं प्राप्त नहीं। ऐसी रसमयी लीला चित्रकूट में ठाकुर जी करते। हमारे भक्तजन कहते हैं कि चित्रकूट में ठाकुर जी ने अनेक रास लीलाएं की। अंतिम रास लीला में श्री जानकी जी के पैर का नूपुर टूट गया, रसभंग हुआ, तो रास वहीं पर बंद हो गई। तो रघुनाथ जी ने कहा अब ये रास लीला बाद में पूरी करेंगे, और ये रास लीला प्रगट लीला हो। इस अवतार में तो ये लीला रहस्यमय थी, गोपनीय थी, लेकिन ये एक रास जो अधूरी रह गई, इस रास को पूरा करने के लिए पुनः मुझे अवतार लेना होगा। और रघुनंदन श्री ब्रज में अवतार लेकर के पुनः महारास करते, ऐसा हमारे भक्तों का चिंतन है, पूर्वाचार्यों का चिंतन है। भगवान श्री रघुनंदन के इन दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित होते, बड़े प्रसन्न होते। और एक दिन श्री दशरथ जी महाराज सभा में बैठे थे, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया, अपने मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण लिया, और सहज भाव से दर्पण लेकर के अपना मुखमंडल देख रहे थे, मुकुट को सीधा कर रहे थे। तो श्री दशरथ जी ने देखा कान के पास के बाल सफेद हो गए। तो दशरथ जी ने सोचा कि ये कान के पास के बाल जो हैं, ये सफेद होकर के कुछ कहना चाहते हैं हमारी कान में, ये बाल हमें उपदेश करना चाहते हैं। क्या उपदेश करना चाहते हैं? मानो ये सफेद बाल कहते हैं, महाराज मैंने अपना रंग बदल दिया, अब आप भी अपना रंग बदल दो। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेश। मानो ये बाल उपदेश करते हैं कि राजन अब तुम वृद्ध हो गए, अब सब कुछ रघुनंदन को सौंप करके तुम मुक्त हो जाओ, अपना सारा साम्राज्य रघुनंदन को सौंप दो। अब इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। वास्तव में उपदेश केवल व्यक्ति ही नहीं देता, हमारे आसपास की हर वस्तुएं हमें उपदेश देती हैं। एक एक जड़ वस्तुएं भी हमें उपदेश देती हैं, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस उपदेश को कितने अंश में ग्रहण कर पाते हैं। उपदेश हर वस्तुओं से हमें मिलता है, हर वस्तुएं बोलती हैं मानो और हमें उपदेश करती हैं। पेड़ का एक पत्ता भी टूट करके गिरता है तो वो उपदेश करता है कि एक दिन हम पैदा हुए थे, बड़े कोमल थे, दिखने में मेरा स्वरूप बड़ा सुंदर दिव्य था, फिर धीरे धीरे हम रूखे हो गए और आज हमारे जीवन की लीला समाप्त हो गई, टूट करके गिर पड़ा। एक पेड़ का टूटने वाला पत्ता भी हमें उपदेश करता, लेकिन उस उपदेश को हम कहां ग्रहण कर पाते हैं, कितना ग्रहण करते हैं? प्रतिदिन संसार में कितने लोग मरते हैं, कितने ऐसे दृश्य हमें दिखते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होता। पाप कर्मों का परिणाम इसी संसार में हम देखते हैं, लेकिन पाप कर्मों से हमारी निवृत्ति नहीं होती। उपदेश तो सर्वत्र मिलता है, ऐसा नहीं है कि केवल प्रवचन में जाने पर ही उपदेश मिलेगा। उपदेश हर वस्तु में देती है। बाल सफेद हो गए तो दशरथ जी महाराज अनुभव करते हैं कि ये मेरे लिए उपदेश है कि मुझे अब इस राज्य कार्य से मुक्त हो जाना चाहिए। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले, कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले। कृतांत माने यमराज। यमराज जब किसी को बुलाना चाहते हैं तो पहले अपने दूत को भेजते हैं, बोले जाओ सूचना दो कि तैयार हो जाए, हम आ रहे हैं। वो दूत कौन है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले। जराकर्ण मूले, कान के पास के बाल जब सफेद होते हैं तो बुढ़ापा के रूप में वो कृतांत की दूती, यमराज की दूती माने सेविका मानो बुढ़ापा आता है। और कान के पास के बाल पक करके ये कहते हैं समागत्य लोका श्रृणुध्वम श्रृणुध्वम, वो पके हुए बाल मानो कान में कहते हैं ए संसार के प्राणी सुनो सुनो। क्या सुनो? बोले परस्ती परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम, परस्त्री परधन और दूसरे को दुख देना, ये सारे दुष्कर्मों का तुम त्याग कर दो। भजध्वम नमान रमानाथ पादारविंदम, और रमानाथ के पादारविंद का तुम भजन करो। वो पके हुए बाल मानो उपदेश देते हैं आकर कृतांतस्य दूती जराकर्णम। एक महात्मा एक भजन गाया करते थे, उसकी एक पंक्ति मुझे याद है क्योंकि हमको गाना होना तो आता नहीं, आप देखते ही हो, ये तो हमारे लोग हैं जो कि इज्जत बचा लेते हैं थोड़ी, बाकी तो हमको तो कुछ आता नहीं। वो एक पंक्ति मुझे याद है, वो महात्मा कहते थे कि केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। ये जीवन यात्रा की गाड़ी गालो भैया,
हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है।
केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। यात्रा तो करनी पड़ेगी, और यात्रा में सामान कितना ले जाना है? कहते हैं दो लगेज केवल साथ जाएगा। क्यों? बोले दो हाथ है आप ही को उठाना, वहां कुली नहीं मिलेगा, वहां कोई हेल्पर भी नहीं मिलेगा जो आपकी सहायता करे। क्यों? बोले आपके दो हाथ हैं इसलिए दो लगेज है बस। और वो दो लगेज क्या है? बोले आपने जो पाप पुण्य किया है उसी की दो गठरी आपको लेकर के चलना, कर्म धर्म की गठरी ले लो साथ यही बस जाती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती। जीवन में हम प्रतिक्षण मृत्यु की ही ओर आगे बढ़ते हैं, और ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ये ज्ञान अगर बार बार बना रहे, स्मरण होता रहे, तो निश्चित रूप से हम असत कर्मों से मुक्त रहेंगे और असत कर्मों में हमारी प्रवृत्ति नहीं। दशरथ जी महाराज ने भी चिंतन किया, आप तो बुढ़ापा आ गया, और अपनी सभा में श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठकर राज्य करते करते मैंने अपने बालों को भी सफेद कर दिया। वाल्मीकि रामायण में यही पंक्ति, इसी का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज ने किया कि श्रवण समीप भये सित केसा मनोह जरटपन अस उपदेश। दशरथ जी कहते हैं कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, प्राप्य वर्ष सहस्राणी बहून्यायुंसि जीवितः, हजारों वर्ष की आयु को मैंने जी लिया, जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। अब मेरे इस जीर्ण शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, अब मैं थक गया हूं। और अपनी सभा में ही उन मंत्रियों के मध्य में उसी समय दशरथ जी महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन को कल ही युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं।
यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम्।
कल प्रातः काल ही मैं पुरुष पुंगव, पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, ये घोषणा कर दी। दशरथ जी ने कहा अब आप लोग अपनी सहमति बताओ। मंत्रियों से पूछा,
भवन्तो मेनुमन्यन्ताम् कथं वा करवाण्यहम्।
आपकी क्या अनुमति है, आप लोग अपने विचार रखो। ज्यों ही श्री दशरथ जी ने कहा कि कल मैं रघुनंदन राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं, आप लोगों की क्या इच्छा है, आप लोगों का क्या विचार है, इतना सुनते ही सभा के जितने लोग थे सब लोगों ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जयकार की। बोले, महाराज आपने तो हमारे मुख की बात छीन ली, हम तो यही कहना चाहते। सबने कहा, महाराज हमारी भी यही इच्छा है। दशरथ जी ने कहा, क्या इच्छा है? तो प्रजा के लोगों ने और मंत्रियों ने कहा कि
इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजे न महतायांतम रामम छत्रावृताननम।
इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीर। लोगों ने कहा, रघुनाथ जी का जो शत्रुंजय नाम का गज है, उस गज के ऊपर सोने का हौदा कसा जाए, रघुनाथ जी विराजमान हों, उनके ऊपर छत्र लगे और पूरे नगर में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए, हम लोग इस दृश्य को देखें, हमारी यही कामना है।
गजे न महता यांतम रामम छत्रावृताननम।
छत्रावृताननम का एक भाव हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अयोध्या वासियों ने कहा कि रघुनाथ जी जब गज पर बैठ करके विराजमान होकर के शोभा यात्रा में चलें तो उनके ऊपर ऐसा छत्र लगे कि उस छत्र की जो झालरें हैं, जो लड़ियां हैं, वो लड़ियां इतनी लंबी हों कि रघुनंदन का मुखमंडल उसी लड़ियों से आच्छादित हो जाए, ठीक से दिखाई न पड़े। क्यों? बोले, डायरेक्ट लोग रघुनाथ जी के मुखमंडल का दर्शन करेंगे तो कहीं किसी का दृष्टि दोष न लग जाए, इसलिए रामम छत्रावृताननम, राम जी का आनंद मुखमंडल छत्र से आवृत हो जाए, ऐसा दिव्य छत्र उनके मस्तक पर लगे और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए, हम लोग दर्शन करें, हमारी तो यही कामना है। प्रजा के लोगों ने, मंत्रियों ने जब इस प्रकार कहा तो श्री दशरथ जी महाराज तो बड़े नीतिज्ञ हैं महाराज, 60,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया है, राजनीति को खूब समझते हैं। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि कहीं प्रजा के लोग मेरी मुंह देखी तो नहीं कर रहे हैं।